सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, भारत के विकास को नई गति देते प्रगति प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री संग्रहालय के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के साथ प्रसार भारती संवाददाता मुकुल शर्मा की विशेष बातचीत।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय पुस्तकालय के अध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव श्री नृपेंद्र मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका।
धन्यवाद।
सबसे पहले आपसे सर समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपने लंबे अरसे से हमने देखा किस तरीके से काम किया, अभी भी आप उनके देखते हैं किस तरीके से सरकार में लगातार काम हो रहा है, लेकिन एक जो विजन निकल कर आया उसको कैसे आप देखते हैं? क्या शुरुआत से ही एक विजन था कि अपने राष्ट्र को अपने देश को कैसे हमें आगे बढ़ाना है?
प्रधानमंत्री जी का जो एक देश के प्रति सपना है, ख्वाहिश है, वह वर्ष 2014 में जब वो उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया तभी से लगभग सभी को ये एहसास था कि उन्हें एक जुनून है। वो ये जानते हैं कि ये देश विकास कर सकता है और वे आशावान थे कि उनके कार्यकाल में एक विकसित भारत की रचना हो सकेगी। उनकी चिंता ये जरूर थी प्रारंभ से ही कि हम देश को, देश के हर नागरिक को, व्यवस्था को, एस्टैब्लिशमेंट जिसको कहते हैं
जी,
जो इंस्ट्रूमेंट है सरकार के, उनको हम दो चीजें कैसे समझाएं। पहली तो वह आवश्यकता थी, जो चाहते थे कि इंस्ट्रूमेंट्स नागरिक उसे इनकल्केट करें, तो बड़ी सरल भाषा में वो कहा करते थे कि हमें एक पर्टिकुलर गोल, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एम्बिशियस होना पड़ेगा। वह यह कहते थे कि हम कहीं न कहीं ये महसूस करते हैं कि दारिद्र का मतलब होता है पावर्टी ऑफ एम्बिशन। तो वो कहते थे प्रायः कि पावर्टी ऑफ एम्बिशन बहुत दिखाई देती है। तो दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो यह थी कि योजनाओं को हम कैसे भूमि पर देखें। इट मस्ट बी सीन ऑन द ग्राउंड, इट मस्ट बी फेल्ट बाय द मासेस, इट मस्ट डिलीवर द एडवांटेजेस फॉर विच दे वर थॉट ऑफ। उसमें कहीं न कहीं उनको एक चिंता ही नहीं, मैं समझता हूं लगभग एलर्जी थी कि ब्यूरोक्रेटिक लैक ऑफ टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, ही एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू सपोर्ट ईच अदर। उन्होंने देखा कि अनुश्रवण की आवश्यकता है, मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं। तो ओवरऑल यू कैन रियली आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर एज समवन हु हैड अ विजन एंड हु हैड अ जुनून फॉर दैट। एक जो होता है ना कि आप जब तक बिल्कुल, उसका एक बहुत क्रूड शब्द है, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं इस्तेमाल किया, मैं जरूर करता हूं, जब तक आपका पागलपन ना हो जाए उसके लिए आप अचीव नहीं कर सकते। उनके पास वो था। वास्तविकता यह है कि वो दिन रात इसी को सोचते हैं, इसलिए उनके पास बहुत कम समय है और चीजों के लिए
जी। और उसी के अनुसार हम क्या प्रगति को भी देख सकते हैं, जिस तरीके से अभी उसकी 50वीं बैठक की अध्यक्षता उन्होंने की, तो ये एक सिलसिला हम मान सकते हैं कि वहीं से चल रहा है कि कोई भी कहीं से भी कोई भी चीज लैक ना करे।
उनके कार्यभार ग्रहण करने के बाद यह व्यवस्था अपनाई गई। मैं निश्चित रूप से उनके साथ जो अधिकारी गण आए थे गुजरात से, जहां उन्होंने इस अनुभव के अच्छे नतीजे देखे थे, तो उन अधिकारी गणों ने, उनको ये ज्यादा एहसास था
जी
कि प्रधानमंत्री जी को इस व्यवस्था के लिए क्या आवश्यकता है। मैं ये अपनी भी कमजोरी बताऊंगा
जी
कि मुझे इतना एहसास नहीं था कि वह किस व्यवस्था के तहत अनुश्रवण करना चाहते हैं, लेकिन ये जो टीम थी ये उनकी पहल थी, क्योंकि उन्होंने वहां देखा था, वो गुजरात से आए थे। तो एक कमरा निश्चित किया गया, सारे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कम्युनिकेशन का, शेयरिंग का, वर्चुअल टॉक करने का, वह सब एस्टेब्लिश किया गया और कुछ आधार बिंदु जो प्रधानमंत्री से मिलकर तय किए गए कि ये प्रगति एक ऑर्डिनरी मॉनिटरिंग मीटिंग नहीं थी, ये रिव्यू मीटिंग के रूप में आप ना सोचे। इसमें प्रोजेक्ट भी पहले से सिलेक्ट होते थे
जी,
और वह प्रदेश स्तर पे जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वह लोग, और जो केंद्र स्तर पे हैं वह लोग, इनको सूचना मिल जाती थी कि ये 10 प्रोजेक्ट्स या 12 प्रोजेक्ट्स
जी
प्रधानमंत्री जी निश्चित तिथि पर उसका अनुश्रवण करेंगे, रिव्यू करेंगे। एक बहुत खास बात यह थी कि इन बैठकों में फियर का माहौल नहीं था। जो अधिकारी आते थे तैयारी करके आते थे, उन्हें मालूम था कि बिना तैयारी के उनका कोई विकल्प नहीं है
जी।
लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि डर के माहौल में आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत करने में सफल ना हो। लेकिन जो अधिकारी प्रदेशों के मुख्य सचिव, प्रदेशों के सचिव, केंद्र सरकार के संबंधित विभागीय सचिव
जी,
दे रिस्पॉन्डेड वेरी वेल टू द प्रोग्राम। सो इट वॉज ए ग्रेट एटमोस्फियर। और मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी को यह सामने मालूम रहता था कि किस प्रोजेक्ट में कितना विलंब हो रहा है, कितना कास्ट ओवर रन हो रहा है, उनको मालूम था। उनको यह भी मालूम था कि कौन कौन सी समस्याएं
जी
अधिकारी प्रस्तुत करने वाले हैं।
तो उन्हीं के समाधान पे फिर ज्यादा फोकस रहा एक तरीके से?
समाधान पे तो फोकस था, एक्चुअली उनके हस्तक्षेप से 90% समाधान होकर ही वहां आते थे
जी।
जो भी कठिनाइयां होती थी, और यदि एक से अधिक विभाग सचिव से संबंधित है या विभागाध्यक्ष है संबंधित, तो वो लोग तैयार होकर आते थे यह बताने के लिए नहीं कि कारण क्या है। प्रधानमंत्री जी इन बैठकों में कारण नहीं सुनना चाहते। बाय नेचर
जी
वह यह आशा करते हैं कि अधिकारीगण आपस में बात करके, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो उनका जो प्रमुख सचिव है, उस समय मैं देख रहा था कार्य को, वह लोग इसका समाधान निकालकर वहां आएंगे,
यानी परिणाम अब सामने हैं।
क्रियान्वयन करने के लिए समाधान होना चाहिए
जी।
तो प्रायः उनका जो फर्स्ट शॉट होता था क्वेश्चन, जो विभाग के संबंधित सचिव चाहे प्रदेश के हों या केंद्र के, तो वो यह पूछते थे कि ये बताइए कि ये इतना विलंब हो गया तो क्या आपने इन कारणों की समीक्षा की है। और कभी कभी तो ऐसा भी मजाक करते थे कि यदि कोई सचिव आने वाले 3 महीने 6 महीने में सेवानिवृत्त हो रहा है
जी,
तो वह एक मैसेज जिसमें उनका दर्द भी था, लेकिन वो बड़े लाइट एटमॉस्फेयर में उसको कन्वे होता था कि सचिव जी आप अपने सेवानिवृत्त होने के पहले तो ये श्रेय, ये यश अपने साथ ले जाना चाहेंगे
जी।
तो एक इंस्पिरेशनल डायलॉग भी वो छोड़ देते थे जो कि कंसर्न ऑफिसर कॉन्शियस हो जाए।
अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, अब हाल ही में जो बैठक हुई उसमें ना सिर्फ जल संसाधन, कोयला, ये तमाम ऐसे क्षेत्र जहां पे हमें फोकस नजर आया, तो देश की जो ना सिर्फ विरासत, जो जिसका विकास बेहद जरूरी है, उसको क्या पहले से ही ध्यान में रखकर इस तरह के से एक फोकस रहा है वहां पे?
जो कार्यशैली है प्रधानमंत्री जी की, उसमें एक दो चीजें बहुत ही निखर कर ऊपर आती है। एक तो उनको इस बात का एहसास है कि विकास में मॉड्यूलर अप्रोच आवश्यक है। मैं प्रायः इसका उदाहरण देता हूं और थकता नहीं हूं कि जब उन्होंने यह कहा कि जनधन योजना लागू की जाए
जी,
तो उनके मस्तिष्क में, उनकी योजना में, उनका जो कार्यक्रम था, उसमें कहीं न कहीं डिजिटलाइजेशन छिपा हुआ था कि किस तरीके से जनधन योजना से हम डिजिटाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन में इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। आज आप सोचें कि यदि अकाउंट्स नहीं होते किसानों के
जी,
तो लगभग 15,000 करोड़ रुपए एक मुश्त में ट्रांसफर कर दिए जाते
बिल्कुल
हर किसान के खाते में पहुंच जाता है
जी।
उन्होंने जब यह सोचा कि हर गांव में बिजली पहुंचा दी जाए
जी,
तो उनको इसका एहसास था कि उस गांव के जो पिछड़े वर्ग की कॉलोनीज हैं या जहां एक वर्ग विशेष रहता है, बहुत सी जगहों पे आपने देखा है गांव में शेड्यूल कास्ट एक साथ रहने लगते हैं, शेड्यूल ट्राइब एक साथ रहने लगते हैं, तो वो यह चाहते थे कि यहां पर बिजली का घर के अंदर जो है कनेक्शन मिले। तो बिना पोल के, बिना कनेक्शन के, बिना विलेज को, तो वह नहीं हो सकता था
बिल्कुल, वो संभव ही नहीं था।
उससे बढ़ करके फिर आगे बच्चों की शिक्षा, वहीं पर जुड़ा हुआ था गैस का चूल्हा। तो जो गांव के एक परिवार के जीवन में क्या क्या आवश्यकताएं थी
जी।
उसकी उन्होंने शुरुआत एक बहुत छोटे कार्यक्रम से किया कि शत प्रतिशत गांव कनेक्ट हो जाए पावर
जी,
से
जी।
और एक इतना बड़ा कार्यक्रम हो गया कि गांव में खुशहाली कैसे आए, जो आज विकसित भारत के बड़े बड़े लक्ष्य हैं ना, ये सभी कहीं न कहीं उनकी आधारशिला उन्होंने पहले 5 वर्ष में रखी थी। और उस 5 वर्ष पे आज एक नया एक तरीके से इमारत खड़ी हो रही है।
बिल्कुल, और लोगों को शायद ये नहीं पता था कि वाकई प्रधानमंत्री खुद न सिर्फ हर योजना के बारे में जानकारी लेते हैं, उस पर समीक्षा करते हैं, कहां किसी तरह की दिक्कत आई और उसके बाद जो कहा गया वो समय रहते पूरा हुआ या नहीं हुआ, सारी जानकारी प्रधानमंत्री लेते थे।
एक तो वो इतने अच्छे कम्युनिकेटर हैं
जी,
जो संवाद है ना उनका, वो जनता के से सामान्य संवाद से अलग थोड़ा सा इस दृष्टि से है कि वो हर एज ग्रुप के साथ संवाद करने की क्षमता रखते,
और इसलिए वो कहते भी हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है।
परीक्षा पर चर्चा, तो एक बालकों के साथ संवाद हो गया। नई टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने जो ये आजकल जेड जनरेशन हो गया है
जी,
तो उन्हें मालूम है कि ये जो क्रिएटिव एज है 25 से 40, इसमें वह किस प्रकार से दिशा ही नहीं उत्साह भर सकते हैं। वरिष्ठ लोगों के साथ चर्चा, तो वह उनका एक अलग माध्यम हो जाता है। तो एक तो ये बात बड़ी, ऐसे कम्युनिकेटर आपको, एंड दैट इज वाई वो हर वर्ग का विश्वास जो है उन्होंने पाया है, उसको आप चाहे मासेज लव हिम उसको समझें, लेकिन ये सही है अपनी जगह,
यानी सबका साथ सबका विकास को पूरी तरीके से सार्थक उन्होंने किया है।
और इसी के साथ जो आपने दूसरा थॉट प्रोसेस प्रस्तुत किया कि वह यही नहीं है कि वो योजनाओं को घोषित करें, बल्कि वह उनको धरातल पर उतरता देखना चाहते हैं। मुझे याद है आयुष्मान योजना, जो अपने तरीके की एक अनोखी योजना
जी,
आप सोचें कि हेल्थ के ऊपर कितना व्यय हम सबका होता है, उसमें एक वर्ग विशेष को राहत मिल सके, अस्पताल तक जाने की सुविधा मिल सके, तो उन्होंने आयुष्मान योजना की। लेकिन उनको ये मालूम था और चिंता थी कि जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन होकर के कार्ड मिलना है उसकी कवरेज बहुत स्लो है,
वहां कहीं ना कहीं कुछ कमी आ
वहां कमी है, और उसी कमी को वह दूर करने के लिए उस योजना के उस विशिष्ट अंग को एक तरीके से उपचार करते थे, अटैक करते थे, उपचार करते थे, इनकरेज करते। तो मैं ये समझता हूं, आपने बहुत सही कहा कि आज उन्होंने घर घर जल की योजना है
जी, नल से जल पहुंच रहा है हर घर।
उन्हें यह मालूम है कि कुछ स्थान पे वो अंतिम पॉइंट पे आकर के कनेक्शन नहीं हुए
जी।
उन्हें यह मालूम है कि यदि जल की व्यवस्था हो भी गई है तो जिस प्रकार से पंचायत को उसकी जिम्मेदारी या सहकारिता को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, समूह विशेष को, वो कदाचित उसमें कमी है। तो इन सभी चीजों को जानते हुए भी वो निराशा नहीं आने देते,
और शायद यही कारण है जिस तरीके से एक बुनियादी विकास को अगर हम देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो प्रधानमंत्री का फोकस रहा है वो न सिर्फ प्रगति में भी हमें दिखाई देता है बल्कि देश की भी अगर बात की जाए, क्योंकि हर स्तर पर जैसे आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से अगर हम शुरुआत करें तो वहां से लेकर लगभग हर एक क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको काफी मजबूती मिली है।
वो तो आप एक चीज होती है ना, आप सीइंग इन बिलीविंग इट, आप देखें तो आपको विश्वास होगा। आज आप हवाई अड्डों को देखें, उनकी संख्या को देखें, तो आपको विकसित भारत का नक्शा दिखाई देता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत के विकास को नई गति देते प्रगति प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री संग्रहालय के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के साथ प्रसार भारती संवाददाता मुकुल शर्मा की विशेष बातचीत।
सुर्खियों में